जिंदाबाद दोस्तों, मैं कबीर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम हमसे है देश की एक नई कड़ी में।
और आज का हमारा विषय है मजदूरों के अधिकार,
वो अधिकार जो भारत के संविधान में दर्ज हैं और जो श्रमिकों के हित को सुरक्षित रखते हैं। खास बात ये है कि ये मौलिक अधिकारों के आधार पर खड़े हैं।
हाँ, और उन्हीं के आधार पर समय समय पर भारत में अधिनियम भी बनते रहे हैं, जैसे 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, जिसमें हाल ही में संशोधन भी हुए हैं।
अच्छा कमानी, तुम्हें पता है कि भारत का संविधान श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने का भी हक देता है, जिसकी वजह से श्रमिक संगठित रूप से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे हैं।
बिल्कुल वैसे जैसे बुलबुल बाग की चींटियों ने लड़ी है ना।
तो चलो बेताल से ही सुन लेते हैं।
बेताल छपी सी, बेताल छपी सी, बेताल छपी सी रे।
बेताल, अरे ओ बेताल, आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ।
लेने आया हूँ मतलब कहाँ जाने के लिए?
अपने साथ। भाई, जिस लोकतंत्र का पाठ तुमने मुझे पढ़ाया है, तुम्हें उसी लोकतंत्र में शामिल करने।
ख्याल तो अच्छा है विक्रम जूनियर, पर पाठ अभी खत्म नहीं हुए। आओ एक बहुत ही मजेदार और जरूरी किस्सा सुनो। बुलबुल बाग में एक मेहनती चींटी थी, चुन्नी। एक बार एक टीला बनाने का काम करते करते वो बहुत ऊंचाई से गिर गई और उसे बहुत चोट आई। और चुन्नी जो दिन रात मेहनत किया करती, उसे सीधे जाकर बिस्तर पकड़ना पड़ा। नीम हकीम तोता उसे देखने आया।
अरे 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 चुन्नी, तुम्हें तो बहुत चोट आई है, अब कुछ दिन तुम्हें बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा।
हकीम काका, कितने दिन?
कम से कम पतझड़ आने तक।
फिर तो बहुत दिन है, काम भी बहुत बचा है, कोई उपाय सुझाइए।
हाँ, वैसे तो जादुई जामुन खाने से ये ठीक हो जाता, पर
क्या हकीम काका?
पर क्या, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अरे वो जादुई जामुन सिर्फ पर निकले हुए पक्षियों के लिए है। और वो भी ऐसे वैसे पर नहीं, खास पर, खास
पर। फिर भी क्या मेरी चोट उससे ठीक हो सकती है सिर्फ जामुन खाने से?
सिर्फ जामुन? अरे अरे अरे, ये क्या कह दिया तुमने? अरे वो सिर्फ जामुन नहीं है, उनकी रोग निवारक क्षमता तो बुलबुल बाग क्या दूर दूर के जंगलों में प्रचलित है। पर वो जादुई जामुन के फल जितने नायाब हैं, उन्हें पाना उतना ही मुश्किल। हाँ, अरे गरुड़ पक्षी उस पेड़ की निगरानी करते हैं, आस पास किसी को फटकने भी नहीं देते। हाँ,
और अगर मेरे पैर निकल आए तो?
अरे कैसी बातें करती है तुम, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ।
जब चुन्नी चपल चींटी से मिली तो उसने कहा,
क्यों नहीं हो सकता चुन्नी, बिल्कुल हो सकता है।
पर चपल चींटी, चींटियों को पर कैसे निकलेंगे? और मैं ठीक नहीं हुई तो मैं वापस काम पर नहीं जा सकती, और काम नहीं करने पर मुझे रोज का दाना भी नहीं मिलता।
क्या कहती हो चुन्नी, दाना क्यों नहीं मिलेगा?
चपल चींटी ने बूढ़े बरगद के नीचे एक सभा रखी। नेक नेवला, घुमक्कड़ घिरनी, शेख चंद सारस, हुकुम चंद हंस, सभी ने इस सभा में हिस्सा लिया। हुकुम चंद हंस ने सबसे पहले अपनी बात आगे रखी।
लगता है बराबरी की लड़ाई लड़ते लड़ते अब हम इस मुकाम पर आ गए हैं कि चपल चींटी के पास और कोई जानवर बराबर लाने को बचा ही नहीं है। तो अपने इस चींटी समुदाय को आगे कर रही है। क्यों शेख चंद?
अरे नहीं नहीं हुकुमचंद भाई, मुझे लगता है हंसों के पास अब शिकायत करने का कुछ बचा नहीं। हा? तो आजकल वो कुछ भी दलीलें देने लगे हैं।
अरे
देखिए देखिए, आप तो आपस में ना लड़ें। अरे भाई, हम चींटियों के हक की बात करने आए हैं, अपनी नहीं। और मुद्दा ये है कि बुलबुल बाग में बराबरी की लड़ाई हम सब कब से लड़ते आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत से पहलू नज़रअंदाज हुए हैं, जैसे ये मजदूर चींटियों का मामला।
पर नीवली जी, गरुड़ पक्षी तो उस पेड़ के आसपास भी नहीं पटकने देते। जामुन तोड़ना तो अलग बात है। क्यों चींटी जी, क्या कागज ए कायदा यहाँ कुछ काम आएगा?
हाँ घुमक्कड़ घिरनी, असल में कागज ए कायदा ही काम आएगा। पर बात सिर्फ जादुई जामुन की नहीं है, बात चुन्नी जैसी मजदूर चींटियों की है, जिनके साथ न जाने कब से अन्याय होता आया है। चुन्नी जब से बिस्तर पर है, तब से जादुई जामुन तो दूर, उसका दाना पानी भी बंद है। टीले बनवाने वाले इस बात का ध्यान नहीं रख रहे कि मजदूर चींटियों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उनकी है।
ये सुनकर सभा में बैठे सभी सदस्य आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। खुसुर फुसुर काफी देर तक चली। बहुत विचार विमर्श के बाद नेक नेओले ने कहा,
तो अब तय रहा कि कागजे कायदा में कुछ नए नियम कानून दर्ज करने होंगे, ताकि मजदूर चींटियों के हक उन्हें मिले और काम के दौरान अगर उन्हें चोट आए तो उन्हें पूरा मुआवजा मिले। तबीयत खराब होने पर उनको और उनके परिवार को दाना पानी मिलता रहे। और कागजे कायदा के इस नियम को गरुड़ पक्षी भी मानेंगे, क्योंकि जब बुलबुल बाग के सभी जानवर बराबर हैं, तो जादुई जामुन का जादू सिर्फ कुछ जानवरों को ही क्यों मिले।
तो क्या समझे?
यही कि चींटी हो या गरुड़, लोकतंत्र में सभी को बराबरी के हक हैं, और मजदूर की मजदूरी, उसका खून पसीना, इस सब का मुआवजा देने की जिम्मेदारी भी मजदूरी कराने वाले की बनती है। उससे वो पीछे नहीं हट सकता।
बहुत अच्छे। और
ये भी कि लोकतंत्र में पहले से चली आ रही रूढ़ियों को नए तर्कों से तोड़ा जा सकता है, ताकि समाज बराबरी की तरफ जाए।
बिल्कुल सही जवाब। और अब मैं चला।
अरे बेताल, अरे अरे बेताल, मेरी बात सुनो बेताल।
बेताल छपी सी रे।
अच्छा कम्मो, तुम्हें पता है भारत में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने काम का सही मेहनताना नहीं मिलता। मालिक का अत्याचार सहना पड़ता है, इज्जत भी नहीं मिलती।
हाँ, ये भी एक कड़वा सच है। चलो ऐसी ही एक कहानी आज सुनते हैं देश विदेश में।
देश विदेश से, देश विदेश से।
दीपा के परिवार के पास खुद की थोड़ी सी ही जमीन थी, इसलिए वो समृद्ध जमींदारों के लिए खेती का काम किया करते थे। पर जब अकाल पड़ा तो उसके परिवार को खाने के लाले पड़ गए। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसके पिता ने साहूकार से 2,000 रुपए का कर्ज लिया था, जिसका ब्याज सर पर चढ़ता ही जा रहा था। तब गांव के ही एक नौजवान ने दीपा के पिताजी को सुझाया कि वो दीपा को अपने साथ शहर ले जाएगा। वहां दीपा जैसी लड़कियां घरों में काम कर महीने का 15,000 तक कमा लेती हैं, ऐसा उसने दीपा के परिवार को बताया। नौजवान ने दीपा के पिता को 10,000 रुपए देने का प्रस्ताव रखा। परिवार ऐसे मौके को हाथ से जाने देने की स्थिति में नहीं था। दीपा तब सिर्फ 15 साल की थी। दीपा को आखिरकार एक शहरी एजेंसी में बेच दिया गया, जहां उसे बताया गया कि उसे 8,000 रुपए महीने के मिलेंगे। पर 3 साल गुजर चुके हैं, दीपा को आज तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। वो अब तक 2 घरों में काम कर चुकी है, जहां उसके खाने पीने पर भी रोक लगती। 12-12 घंटे तक लगातार काम कराया जाता, यहां तक कि उसने यौन शोषण भी झेला। जब भी उसने आवाज उठाने की कोशिश की तो घर के मालिक पुलिस बुला लाए। पुलिस वालों ने भी दीपा को ही धमकाया। दीपा और उसके घर वालों के बीच संपर्क टूट गया। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दुनिया में करीब 2,10,00,000 लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं, जिसमें 1,14,00,000 से भी ज्यादा महिलाएं हैं और 95,00,000 पुरुष और लड़के हैं। करीब 1,90,00,000 लोग निजी संस्थाओं के हाथों और करीब 20,00,000 लोग राज्य या विरोधी गुटों के हाथों शोषित होते हैं। 40,50,000 लोग यौन शोषण का शिकार होते हैं।
ये सच का आईना जो तुमने दिखाया है कबीर, बहुत ही भयानक है।
हाँ वो तो है, पर यहीं पर काम आता है लोकतंत्र, एक औजार की तरह जो समाज में पनप रही बुराई को समय समय पर ठीक करता रहता है और लोगों को सशक्त बनाता है। तो चलो, एक था नागरिक में लोगों के बीच जाकर इसी विषय पर उनसे उनके विचार जानते हैं। तो हमने आपसे पूछा कि आपके अनुसार बाल मजदूरी यानी चाइल्ड लेबर की समस्या कैसे हल हो सकती है।
जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ के जो संस्थान हैं, कितने सारे हैं जो चाइल्ड लेबर और इन सब से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उन सब के साथ कोलैबोरेट करे या कुछ ऑफिशियल्स भेजे, उनकी ट्रेनिंग की जाए।
अपने में कोई अलग समस्या नहीं है, वो जुड़ी हुई है आबादी से, वो जुड़ी हुई है पढ़ाई की कमी से, मतलब उतनी एजुकेशन जो मिलनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन, वो सब नहीं मिल पा रही है।
चाइल्ड लेबर ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उनको प्राइमरी स्कूल में इनरोल किया जाए। 14 साल के बाद उनकी जो एज है वहाँ उस लेवल पे वो काम करे कहीं जाके, इसके लिए उनको स्कूल में ही किसी तरीके की तालीम की व्यवस्था की जानी चाहिए।
देखिए, बाल मजदूरों की समस्या अपने आप में एक, अगर उसको देखा जाए इस तरह से, तो एक संरचना की समस्या जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। और इसके साथ इसकी जटिलता एक और है कि ये सिर्फ संरचना में बदलाव करके हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, इसके साथ हमारी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इसमें रोल है। बहुत सारी जगहों पे हमारे पास कानून है कि छोटे बच्चों को कारखानों में या अपने घरों में हाउसमेट्स के रूप में ना रखा जाए, लेकिन कानून अपने जगह पे है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे कारणों से उन बच्चों को अपने यहाँ रखते हैं। और तो वही बात है कि कानून के साथ साथ जनता और जो पब्लिक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दोनों मिल के कहीं ना कहीं जब वो साथ आएंगे तो एक सकारात्मक समाधान आएगा।
और आइए दिल से में अब सुनते हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन का ये गाना।
अब समय हुआ है एक सवाल का, जिसका सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट। आज का सवाल है, भारत में अप्रैल 2016 तक औसत न्यूनतम आय कितनी है। जवाब देने के लिए 07966210428 पर एक मिस्ड कॉल दें और हम आपको वापस कॉल करेंगे।
और हाँ, हमें आप पत्र, ईमेल और फोन के जरिए जरूर बताएं, अपनी कविताएं और गाने भी जरूर भेजें। और ईमेल एड्रेस है freedom@idiosyncmedia.org। एसएमएस और फोन करने के लिए हमारा नंबर है 09958747972। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, पर हाँ, इस वादे के साथ कि हमसे है देश की अगली कड़ी में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जिंदाबाद।